ओम शांति। कैसा लगा बाबा कल? मेजर साहब बहुत अच्छा। इंद्र प्रताप कैसा लगा बाबा कल? लव में लीन, वरदानी स्वरूप बाबा बहुत अच्छा तो है ही, इसमें तो कोई बात ही नहीं, उससे अच्छा तो कोई है ही नहीं दुनिया में। संतु बहुत प्यार में, आप सबने देखा होगा बाबा के नैन क्या हो रहा था, छलक रहे थे, बस गिरने ही वाला था, रोके बैठा था। जरूर ऐसी आत्माएं कल बाबा के सामने थी, बाहर या यहां, जिनके प्यार में बाबा भी बहुत 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 भावुक थे। तो प्यार का स्वरूप हम बाबा का हर बार देख रहे हैं, और इस प्यार से हमें क्या फायदा हो रहा है, कल कह दिया बाबा ने, ये परमात्म प्यार तुम्हें अशरीरी बनाने वाला है। जो आत्मा इस प्यार में जितनी मग्न होगी उतना ही देह से न्यारापन सहज होता जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी? मन जीत जगत जीत। और क्या बात थी? माताएं बताएंगी सबको क्या कह रहे थे बाबा, बहुत खुश भी रहना है। और क्या कह रहे थे? खुशी बांटनी भी है, बहुत बड़ी चीज है ना आज के लिए, खुश रहना, खुशी बांटना। संसार में खुश रहने वालों की संख्या 1% होगी, मुझे लगता है 1% भी मुश्किल से होगी। और हमारी खुशी ये कुछ और तरह की खुशी भी है, जिसमें अलौकिकता है, रूहानियत है, जिसमें शक्ति भी है, और सभी आत्माओं के लिए आत्मिक प्रेम भी है। तो हम खुश हैं, खुशी बांटें। हमारा खुश रहना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि हम हैं कल्प वृक्ष के तने, और तनों से क्या जाता है पूरे पेट को? सारा भोजन पानी, सारी एनर्जी, जिससे वृक्ष कोई भी बढ़ता है वो तने से, जड़ों से ही होता है ना। जड़ों को काट दिया जाए पेट सूख जाएगा। हम कल्प वृक्ष की जड़ें भी हैं और हम तने भी हैं। तो बाबा की मुरलियां पहले बहुत चली हैं, तुम खुश होंगे तो सारा संसार खुश होगा, तुम्हारे अंदर दुखों की लहर होगी तो ये दुखों की लहर संसार में भी फैल जाएगी। इसलिए हमें अपनी स्थिति पर इसलिए भी बहुत ध्यान देना है ताकि हम संसार को बहुत कुछ दे सकें। हम दाता हैं, हमें संसार को बहुत कुछ देना है। मेरे पास अभी अभी एक भाई आया था, विदेशों में बहुत जाता है, अहमदाबाद रहता है, हाईली एजुकेटेड, 1 साल से ही ज्ञान में, उसकी इतनी भावनाएं, उसको जो आधुनिक टेक्नोलॉजी है, आईटी आदि, कंप्यूटर, इन सब का बहुत ज्यादा ज्ञान है क्योंकि एमटेक किया हुआ उसने इसी में। तो उसकी बहुत इच्छा कि मैं बाबा का सारा ज्ञान का खजाना संसार के हर व्यक्ति तक पहुंचा दूं। मेरे पास रहा 15-20 मिनट, मुझे दिखाया मैं क्या क्या कर रहा हूं। तो मैं देख रहा था कि उस व्यक्ति के अंदर संसार को देने की कितनी भावना है, वो इस पे खर्च करने को तैयार है, उसके पास संपत्ति भी है, वो खर्च कर रहा है। 1 करोड़ उसने खर्च कर दिए, 1 करोड़ 10 लाख मुझे बताया, और भी खर्च करना चाह रहा है कि मैं बाबा का सारा खजाना संसार में भेज दूं। उसको पता है कैसे भेजना है, तो बता रहा था हमारे यहाँ क्या क्या नहीं हो पा रहा है जिसके कारण हमें ये भेजने में तकलीफ हो रही है। तो देखिए ये कितनी अच्छी भावना है। देने की इच्छा, सबको सुख देने की श्रेष्ठ कामना, दातापन के संस्कार। मैंने उसको कहा आप में दातापन का बहुत है, कहा बचपन से ही मुझे है, पता नहीं क्यों, ये तो अब मुझे पता चल रहा है कि मेरे में है, पर मैं तो जब पढ़ता था तो अपने साथियों को ऐसे ही पढ़ाया करता था, किसी को फीस नहीं है उसकी फीस दिला दिया करता था। देने का संस्कार, लेने में सुख या देने में सुख, देने का सुख बहुत जबरदस्त है। लेकिन संसार में सभी लेने की कामना करते हैं और हम सब देने वाले हैं, तो खुश रहना है और इस पर बहुत अच्छा अपने अंदर चिंतन रखना है कि मेरी खुशी को छीनने वाली कौन सी बातें हैं, कौन सा संकल्प है। गहराई से काम करेंगे इस पर, मेरी कौन सी कामनाएं हैं जो मेरी खुशी को नष्ट करती हैं, क्योंकि जितनी किसी मनुष्य के अंदर कामनाएं होती हैं उतनी उसकी खुशी कम हो जाती है। जो कामनाओं के त्यागी हैं, जिसे किसी से कुछ नहीं चाहिए, जो दूसरों के बोल से प्रभावित नहीं होते, वो सदा खुश रह सकते हैं। जिनके पास ज्ञान का खजाना भी भरपूर है, अब संसार में भी कुछ लोग खुश रहते हैं, लेकिन हमारी खुशी है ज्ञान के बल से, क्योंकि हमारी माया से भी युद्ध है, हमें अपने जन्म जन्म के विकर्म भी नष्ट करने हैं, तो हमारी युद्ध थोड़ी पावरफुल है, हम इसमें विजयी होते हैं शक्तिशाली बनकर और ज्ञान के बल से। तो सभी चेक कर लेंगे मेरा अपना ही कौन सा संकल्प मेरी खुशी छीन ले जाता है। बहुतों के साथ ये भी होता है कि वो बैठे हैं मौज में हैं, एक संकल्प आया और खुशी चली गई, किसी ने कुछ कहा नहीं, कोई गलती नहीं हुई, पर खुशी चली गई। जब मनुष्य गलती कर देता है तब भी उसकी खुशी चली जाती है। हम खुश रहने को अपनी आदत बना लें। मैं अपनी क्लासेज में एक उदाहरण दिया करता हूँ, सोमनाथ देखने हम गए थे तो एक व्यक्ति जो जिसकी छोटी सी दुकान थी और ये छोटी छोटी चीजें बेच रहा था, कोल्ड ड्रिंक्स पानी, वो इतना खुश था कि हमने उसको कहा कि पानी की बोतल एक दे दो, तो पानी की बोतल उठाने तक उसने डांस किया, पास ही थी उसके 3 फुट पर, फिर पानी की बोतल लेकर गीत गाया, फिर हमें देते हुए भी डांस किया, किसी ने लिमका मांगा, लिमके की बोतल को 3 बार ऊपर फेंका, पकड़ा, गीत गाया, ढक्कन खोला, फिर गीत गाया, डांस करते हुए दिया। मैंने उसे पूछा आप तो बड़े खुश रहते हो, साधारण सा लड़का 30 साल का होगा। जब मैंने उसे पूछा कि तुम तो बहुत खुश रहते हो, तो उसने बहुत अच्छी तरह उत्तर दिया, साहब मैंने सोच रखा है कुछ भी हो जाए मुझे तो खुश रहना है। हम भी 6-7 थे, हम एक दूसरे को देखने लगे, हम में से कौन कितना खुश रहता है। इधर भगवान के बच्चे खुश नहीं रहते और वो एक साधारण सा व्यक्ति बहुत खुश है। उसको ये भी नहीं कि एक बहुत ग्राहक खड़े जल्दी जल्दी दे दो, वो मस्ती से काम कर रहा है, डांस करते हुए ग्राहकों को सामान दे रहा है। मन बना लिया है ना मुझे खुश रहना है। लोगों की खुशी कैसे हो जाती है, सोचा था आज शाम तक 1000 रुपए कमा लेंगे, अब देखा 800 ही मिले हैं, खुशी गुम। 200 कम रह गए इसके लिए खुशी गुम, 800 कमा लिए इसकी खुशी नहीं। तो चेक करेंगे कौन से हमारे निगेटिव विचार हमारी खुशी को हमसे छीनते हैं। माताओं से कोई गलत व्यवहार करे, अपने लोग गलत व्यवहार करें, उसका हमारी खुशी पर कितना असर पड़ रहा है। नीचे बैठते हैं, यहाँ नहीं बैठे, यहाँ बैठ गए, खुशी नशा गुम हो गया। बहुतों के साथ होता है नीचे, मैं कहता हूँ अरे भाई बैठो तो कहाँ बैठो, या तो अपनी सीट पर बैठो या भगवान के दिल में बैठ जाओ। क्यों जगह के लिए परेशान हो रहे हो? कई लोग सारा सुख गंवा देते हैं इस एक संकल्प से कि मुझे वहां बैठना था, इधर बैठा दिया। आप देख सकते हैं, पर्सनल बात है, वैसे माइक पे बोलनी नहीं चाहिए। बाबा जब विदाई ले रहा था, आपने ध्यान से देखा सामने बैठे वालों को कितना देखा बाबा ने? और कुछ देख रहा था वो सारे संसार को देखता है वहीं बैठकर। सामने वालों पे तो मैं ध्यान से देख रहा था, क्योंकि मैं आ गया था, मैं देख रहा था टीवी पर कि बाबा किधर देख रहा है। नीचे तो मुश्किल से ही देखा हो गया, उड़ती नजर डाल दी होगी जाते हुए, किसी और को देख रहा था। उसको कौन अट्रैक्ट करते हैं? ये बात है ना, ये नहीं जो उसकी गोद में बैठे उनको वो प्यार कर रहा है, हो सकता है वो उसे प्यार कर रहा जो उससे 1000 मील दूर है। उसकी गति ये स्थूल नहीं है। भगवान इस सांसारिकता में, इस लौकिकता में, ये स्थूलता में नहीं है, वो इन सबसे परे है। जो जितने पवित्र हैं, जो जितनी पुण्य आत्माएं हैं, जो जितने दूसरों को सुख देते हैं, जो जितने अच्छे योगी हैं, जो बाबा की कार्यों के लिए, उसकी यज्ञ सेवा के लिए कुर्बान है, उन पर वो मेहरबान है। चाहे वो उन्हें वहां न भी देखे। सुना होगा आपने कल ध्यान से, इलाहाबाद की बात करते हुए बाबा ने कहा, बच्ची को बाबा अमृत वेले याद करता है तो उसको क्या होता है? इससे उमंग उत्साह रहता है। ये सूक्ष्म गति है। इस सूक्ष्म गति को हमें समझना है, अपनी खुशी को खोना नहीं है। स्वराज वो मन जीते जगत जीत। अब हम इस पर चर्चा करेंगे, ये हम सबका बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है। साधनाओं के फील्ड में अब तक जब से साधनाएं प्रारंभ हुई, द्वापर थोड़ा सा बीता और साधनाएं तपस्वियों ने शुरू की, ये सब्जेक्ट तब से ही चलता आता है कि जो मनुष्य अपने मन को जीत लेता है वो संसार को जीत सकता है, वो प्रकृति के तत्वों को जीत सकता है, वो घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। तो अब बाबा हमें, आपको याद होगा साकार में जब बाबा की मुरलियां चलती है तो मन जीत को बाबा कैंसिल कर देता था। क्या कहता था? माया जीते जगत जीत। क्योंकि बाबा हमें स्टेप वाइज पढ़ाता है ना, तो वो देखता था कि मन को जीतना बहुत कठिन काम है, इसलिए पहले माया को जीतो, मन जीता जाएगा। अब बाबा ने देखा कि बच्चे बहुत आगे बढ़ गए हैं तो सीधा मन जीतो। कई बार आ चुकी है ये बातें। तो हम मन को कैसे जीत सकते हैं, इसका अर्थ क्या है? भक्ति में और जो साधनाएं चली उनमें इसका अर्थ क्या लिया गया? मन को जीरो कर दो, नो थॉट, निसंकल्प। और बाबा मनजीत का क्या अर्थ करते हैं? मन को जिस दिशा में चलाना चाहें, जिन संकल्पों में रखना चाहें, उनमें हम रह सके। मन हमारी इच्छा के विरुद्ध भटके नहीं। अगर हम चाहते हैं कि मुझे 10 मिनट इस स्थिति में स्थित होना है तो हम उससे इधर उधर न हो, हमारा मन हमको भटकाए नहीं। अगर हम चाहते हैं 10 मिनट हमें बीज रूप स्थिति में स्थित होना है तो हम वो कर सकें। अगर हम चाहते हैं हम भविष्य के नशे में स्थित हो जाएं 10 मिनट तो हम भविष्य के नशे का आनंद ले सकें, भविष्य का स्वरूप हमारे सामने दिखाई देने लगे, वो इधर उधर न जाए। अगर हमें अनुभव करना है कि मैं आत्मा इस देह से न्यारी हूँ तो लंबा काल हम देह से न्यारे रह सकें। हमारा मन हमें देहभान की ओर न ले चले, ये है मन जीत। अब इसके लिए हमें क्या क्या करना है? याद होगा आपको कल बाबा ने कहा, शक्ति स्वरूप होकर मन को जीतो। कोई भी चीज, घोड़ा भी अगर बहुत तेज दौड़ रहा है तो उसको शक्तिशाली सवार ही कंट्रोल कर सकता है ना, एक एक्सपर्ट। दूसरा, घोड़े की नेचर को जानने वाला। तीसरा, शक्तिशाली। घोड़ा बहुत तेज भाग रहा है और बैठने वाला सवार एक्सपर्ट नहीं है तो गिर जाएगा ना, वो शक्तिशाली नहीं है तो घोड़ा उसकी बात सुनेगा नहीं, उसको इशारे को समझेगा नहीं, और उसको विधि भी आनी चाहिए। हम भी इन तीनों को ध्यान देंगे, हम एक्सपर्ट भी हो जाए, हमारे पास संपूर्ण ज्ञान हो, हमें मन की नेचर का भी पता हो, मेरा मन किधर भटकता है, मन को भटकाने वाली कौन सी चीजें हैं। केवल ये कहने से काम नहीं चलेगा कि मन बहुत चंचल है, पता नहीं कहाँ भटक जाता है, हमें पता होना चाहिए वो कहाँ भटकता है। ठीक है, तो इन तीनों चीजों को हम लेंगे, मन की नेचर, हमें एक्सपर्ट होना है, जैसे घोड़ा सवार, घुड़सवार एक्सपर्ट हो ना घुड़सवारी में तो वो उसे सहज कंट्रोल कर सकेगा। और तीसरा, शक्तिशाली। मन कहाँ भटकता है, कौन भटकाता है मन को, पांच बातें निकालेंगे। पहला है इच्छाएं। जिस मनुष्य ने अपनी इच्छाओं को कम नहीं किया और वो चाहे मेरा मन न भटके, हो नहीं सकेगा। इसलिए संगम युग पर भगवान को पाने के बाद, ईश्वरीय ज्ञान लेने के बाद, अपनी इच्छाओं का दमन नहीं, क्या करेंगे, छोड़ते चलें। छूटती तब है इच्छाएं जब उससे ज्यादा अच्छी चीजें मिल रही हों। हमें सबसे अच्छी चीज मिल गई, मैं आपको एक अनुभव सुनाऊं। आज एक माता मेरे से मिलने आई, छोटी सी बच्ची थी, उसके साथ एक छोटी बच्ची थी। कहा मैं यहाँ आई तो पति आने नहीं देता था, कहा मेरा पति बहुत प्रसिद्ध ज्योतिषी है दिल्ली में, मैं यहाँ आ गई तो मुझे फोन किया, तुम्हारा भाव, ये ज्योतिषी की भाषा है, तुम्हारा भाव बहुत सुंदर चल रहा है, तुम्हें कोई बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है। मैंने कहा तो तुमने उसे बताया नहीं कि मुझे भगवान मिल गया, कहा अभी तो नहीं बताया। अरे मैं कहा तुम चुप क्यों गई भाई, वो विरोध करता है, आने नहीं देता उसको सेंटर। मैंने कहा अभी फोन कर दो कि आपने कल कहा था ना मुझे तुम्हारा बहुत सुंदर भाव चल रहा, समय दशा जो भी उसमें होती है वो चल रही है और तुम्हें बहुत बड़ी चीज मिलने वाली है, बता दो कि मुझे बहुत बड़ी नहीं, सबसे बड़ी चीज मिल गई है, स्वयं भगवान आपके मुख में गुलाब, वो खुश भी हो जाएगा अपनी बात, अपनी महिमा सुन के तुम्हें सहयोग देगा। उन्हें कर दिया होगा फोन, तैयार हो रही थी वो कि मैं कर दूंगी। तो सबसे बड़ी चीज, चीज क्या कहें, कोई शब्द नहीं उसके लिए, सबसे बड़ी सत्ता, प्यार का सागर, जिसको पाने के बाद और कुछ भी पाने की जरूरत नहीं, जिसको पाने के बाद और कुछ पाने के लिए प्रयास नहीं करना, जिसको पाने के बाद जन्म जन्म की प्यास बुझ जाती है, आत्मा तृप्त हो जाती है, वो मिल गया, मिल ही नहीं गया बल्कि हमारा हो गया। इस गुड फीलिंग से इच्छाओं को समाप्त कर दें, यहाँ पे ही हो जाएगी, इस नशे में रहेंगे, इस खुशी में रहेंगे, इच्छाएं लोप होती जाएंगी। दूसरी चीज, मन को भटकाते हैं, और एक शब्द बोलेंगे इसके साथ, कर्म इंद्रियों का रस। समस्याएं भी ठीक है, उस पर तीसरी बात पे आते हैं, कर्म इंद्रियों का रस, आंखों का रस, और बहुत खतरनाक है आजकल कानों का रस, टीवी आदि सब कानों का रस। मैंने देखा बहुत लोगों से कुछ बातें सुनकर मैंने जाना, जिस व्यक्ति को टीवी देखने का बहुत शौक लग जाए क्या होता है उसे, उसके मन में थोड़े ही समय के बाद एक विशेष तरह की निराशा का जन्म होता है। बड़ी सूक्ष्म बात है, उसको वो भी नहीं समझ पाएंगे। पुरुषार्थ न करने की इच्छा, मूल्य सुनने जाना है चले जाएंगे, रुचि कम। क्यों? क्योंकि टीवी में जो कुछ वो देख रहा है वो आत्मा की नेचर के विरुद्ध है, प्रतिकूल है, इसलिए आत्मा उसे स्वीकार नहीं कर रही है। और इसका परिणाम होता है जीवन में सूक्ष्म निराशा। कर्मेंद्रियों के रसों से हम बचेंगे। तीसरी चीज है समस्याएं जो मन को बहुत भटका रही हैं, और समस्याएं संसार में बढ़ती जा रही हैं। हमें ऐसा जीवन जीना है, मैं समस्याओं पर अब चर्चा नहीं करूंगा, पर हमें ऐसा जीवन जीना है कि समस्याओं का आभास ही न हो। एक और प्रैक्टिकल सत्य उदाहरण देता हूं। एक युगल बाबा से मिलने आए नीचे, सेठ जी हैं, दोनों की दो लड़कियां, उनको उनकी शादी हो गई, अब दोनों ही रहते हैं, मकान है। बता रहा था भाई पहले मेरे से मिलने आया, मैं उनके वहां गया था भट्टी के लिए, तो कहा मेरी जो मिसेज है वो इतनी संतुष्ट आत्मा है कि उसने उसको जीवन में लगता ही नहीं कोई समस्या है। तो बताने लगा कि हमारे जीवन में एक ऐसा भी समय आया जब हमारे पास गरीबी आ गई। मैं अपनी युगल को घर चलाने के लिए 1500 रुपए देता था, उसने कभी मुझे नहीं कहा कि ये तो कम है, कैसे काम होगा, बल्कि वो कहती थी कि हमारी नौकरानी 300 रुपए में घर चलाती है तो मैं 1500 में क्यों नहीं चला सकती। और भी कई बातें बताई कि मैं कितना यज्ञ में दे रहा हूं, वो कभी पूछती नहीं, उसने कितना डाला वो भी नहीं सोचती, कौन क्या कर रहा है सोचते ही नहीं, बहुत खुश रहती है। मैं उन्हीं के घर में रहा था, मैं और रूपेश भाई थे, दोनों उन्हीं के घर में रहे थे, अभी 3 मास पहले गए। तो मैं सोच रहा था कि देखो, एक मनुष्य है जो कदम कदम पर समस्याएं फील करता है, दूसरा मनुष्य है जिसको लगता है जीवन में कोई समस्या ही नहीं है। हम अपने जीवन को इस ढंग से जीना सीखें कि समस्याओं की अविद्या हो जाए, जैसे इच्छा मात्रम अविद्या है, समस्याएं मात्रम अविद्या हो जाए, कोई समस्या मेरे जीवन में नहीं है। हो सकती है? हो सकती है, बोलो भाई, हो सकती है। हमारी नेचर सरल हो, हम अपनी एक्सपेक्टेशंस को, कामनाओं को कम कर दें, बस। अब माताएं बताएंगी चौथी बात मन को भटकाने वाली, माताओं का नंबर है, इच्छाएं हो गई, जल्दी बोलो, सबको अनुभव है। मोह, ठीक है ठीक है, मैं इसलिए आपसे नहीं पूछा कि माताओं में मोह होता है, मोह तो सब में ही होता है। सभी विकार, मनोविकार मनुष्य के मन को भटकाते हैं, मनोविकार हैं, और मनोविकार मन की मूल नेचर के विरुद्ध है। मन की मूल नेचर पवित्रता है, तो विकार मन को स्वीकार नहीं है। हम इस बात को स्वीकार कर लें कि विकार, बुराई, व्यसन मन को स्वीकार्य नहीं है, इसलिए मन कोई भी विकार आते ही भटक जाता है। हम मन की नेचर की बात कर रहे थे, मन की नेचर है सदा आनंद में रहना, मन की नेचर है सदा पवित्र रहना, मन की नेचर है सदा सुखों में रहना, उसके विरुद्ध जो चीजें आती हैं वो मन को भटकाती हैं। कल की मुरली सबको याद होगी, सवेरे की, किस पे थी? क्रोध, क्रोध पे थी। क्रोध मन को बहुत विचलित करता है, सभी विकार, कोई भी विकार हो, चाहे वो ईर्ष्या द्वेष हो, चाहे वो आलस्य क्यों न हो, थोड़ी बहुत भी मन में बदले की भावना हो, किसी के लिए जरा सा भी आवेश हो, क्योंकि वो मन की नेचर के विरुद्ध है, इसलिए मन को भटका देते हैं। हमें इनसे मुक्त होना है। पांचवी बात बोलो, सुंदर कोई गहरी बात जो मन को भटकाती है, मैं और मेरा। कभी बहुत पहले बाबा की अव्यक्त मूल्य में एक ये गुह्य बात आई थी कि 10 मिनट तुम योग में बैठो और अगर चेक करो कि मन कहां भटक रहा है तो पता चलेगा उसका कारण या तो मैं है या मेरा है। मेरा बोझ, अव्यक्त मूल्यों पे ध्यान दिया होगा आपने, आज थी कल, आज संडे आज है ना। मेरा नाम बदनाम न हो जाए, ये मेरे बच्चे, लोग मुझे क्या कहेंगे, ये बातें भी जो सामाजिक दृष्टि से मनुष्य को प्रभावित करती हैं, मनुष्य के मन को भटकाती हैं। अब लोग क्या कहेंगे इस पे विचार करें, या भगवान क्या कहेगा इस पे विचार करें। बोलो, किस पे विचार करेंगे? भगवान क्या कहेगा, उसकी हमसे क्या श्रेष्ठ कामना है। देखिए ये कितनी सुंदर बात है कि इस समय स्वयं भगवान हमसे कुछ चाहता है, और जो इस समय उसकी कामनाओं को पूरा करेंगे क्या हो जाएगा, वो बांध लेते हैं भगवान को, वो उनकी कामनाएं पूरी करता है। तो ये पांच बातें, मन को भटकाने की तो बातें बहुत हैं, पर हमने सार रूप में ये पांच बातें कही। हम कुछ अभ्यास करेंगे। मन को शक्तियों से कंट्रोल किया जा सकता है। दौड़ते घोड़े को शक्तिशाली सवार ही कंट्रोल कर सकता है। साथ में क्या हाथ में हो? लगाम भी हाथ में हो। लगाम को यूज करना भी जानते हो। रोकना हो घोड़े को, लगाम खींचनी हो और लूज छोड़ दी जाए और एड भी लगा दी जाए, पैर मार दिया जाए घोड़े को, तो क्या करेगा घोड़ा? और तेज दौड़ेगा, फिर चिल्लाएंगे बचाओ मुझे घोड़ा लेके भाग रहा है, ऐसा हो जाएगा ना। मन भी ऐसे ही लेके भाग जाता है मनुष्य को कहां कहां। तो हमें अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, इसलिए दो विशेष स्वमान हम अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और स्वराज अधिकारी हूं। याद होगा आपको, कल बाबा बार बार कह रहे थे मन मेरा है, मेरा कहते हो ना। तो हमें ये बहुत फीलिंग अपने को देनी पड़ेगी, हे मन मैं तुम्हारा मालिक हूं। आप ये करके देखें जीवन में, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान और स्वराज्य अधिकारी हूं। ये संकल्प करते ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, क्या फायदा होता है? माताएं बताएं, हमारी शक्तियां काम करने लगती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। अगर हमारे पास शक्तियां तो हैं लेकिन हम मास्टर सर्वशक्तिवान के स्मृति में नहीं है, तो शक्तियां होते भी वो काम नहीं करेंगी। जैसे माचिस तो हमारे पास हो लेकिन हम उसे यूज ही ना करें तो डब्बी भरी हुई आग पैदा नहीं कर सकती ना। तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, इससे हम शक्तिशाली बन जाएंगे, हमारी शक्तियां काम करने लगेंगी। और मैं स्वराज अधिकारी हूं, हे मन हे मेरी बुद्धि मैं तुम्हारा मालिक हूं। तो धीरे धीरे मन हमें अपना मालिक स्वीकार कर लेगा। ये बहुत डीप टेक्निक है, इसे आप यूज करके दे जीवन में। रोज सवेरे उठते ही मैं मन का मालिक हूं, अपने मन से बात करें, हे मन मैं तुम्हारा मालिक हूं, और देखें इसका परिणाम। बुद्धि हमारे पास सुंदर लगाम है, बुद्धि में क्या है, क्या है बुद्धि में, आप सबके पास है, क्या है, ज्ञान। क्या है, माताएं बोलेंगी क्या है, ये ज्ञान हम सबके पास है। ज्ञान हमारे पास एक लगाम है, बुद्धि न कह के ज्ञान लगाम है। और बाबा दूसरा शब्द भी यूज करते हैं, श्रीमत लगाम है। तो हम अपने पास भिन्न भिन्न तरह से मन जब भटकता है उसको किस किस ज्ञान की पॉइंट से कंट्रोल करेंगे, ये नोट करें। इस पर सभी को जो बिल्कुल मन के मालिक बनना चाहते हैं, मन जीत बनना चाहते हैं, वो ये थोड़ा सा होमवर्क करेंगे कि मेरा मन इधर जा रहा है। हमने देखा किसी के कपड़े बहुत अच्छे हैं, माताओं ने देखा दूसरे ने साड़ी बहुत अच्छी पहनी है, अब मन इधर गया, मेरे पास भी होनी चाहिए, पैसा तो है पर ऐसी साड़ी नहीं है। क्या संकल्प करेंगे ज्ञान का, क्या संकल्प करेंगे बोलो, माताएं अनुभव सुनाएं। ये तो स्थूल चीज है, अगर मैंने साड़ी बहुत सुंदर पहनी हो और मन सुंदर ना हो, चेहरे पे 12 बज रहे हो, तो साड़ी मेरी सुंदरता को बढ़ाएगी? सबसे ज्यादा सुंदरता किस चीज की है, मन की, जो हमारे चेहरे पर आती है। मन बहुत खुश हो, चेहरा चमकता होगा ना, कैसे भी कपड़े पहने हो, लोग कपड़ों को देखना ही भूल जाएंगे, होगा या नहीं? अगर हमारी रूहानी चमक बहुत जबरदस्त हो तो कोई हमारे कपड़े नहीं देखेगा, हमने कैसे जूते पहने देखेगा नहीं, हवाई चप्पल पहन के घूमाओ कोई कहेगा नहीं हवाई चप्पल क्यों पहनी है। मन की सुंदरता बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसा यूज करेंगे पॉइंट, मन की इच्छा हो गई, संकल्प चलने लगे, मन भटक गया, कौन सा ज्ञान का पॉइंट यूज करेंगे बोलो। स्वयं भगवान हमें मान दे रहा है, ये मनुष्य तो आज मान देगा, मान लो मेरी महिमा कर भी दे, उसे होगा क्या? अपने से बात करें, ये मेरी महिमा के 4 लाइन बोल दे और मैं खुश हो जाऊं, उसे नहीं बोला तो मेरा मन डिस्टर्ब हो गया, तो वो खुशी मेरी कितना समय चलेगी, कुछ भी नहीं। तो असली स्वमान हमारा सच्चा मान है, मान का आधार ही स्वमान है। हम अपनी श्रेष्ठ स्थिति में रहते हैं वही बहुत बड़ा मान है। सारा संसार हमें मान देगा, पूर्वज मानेगा, इष्ट देव देवियां मानेगा, वो होगा सबसे बड़ा मान। तो हम छोटे छोटे मान के पीछे न भटके अपने को समझा देंगे, किसी वस्तु की इच्छा हुई हमें, ये वस्तु हमारे पास भी होनी चाहिए, देखा 4 के पास तो बाइक है मेरे पास नहीं है, वो भी कहेंगे तुम कैसे हो, बाइक भी नहीं तुम्हारे पास। अब इच्छा हो गई मेरे पास भी एक अच्छी सी बाइक होनी चाहिए, लेकिन पैसे नहीं है, संकल्प चलने लगेगा, कौन सा ज्ञान का पॉइंट यूज करें बोलो बोलो। अमन भाई आप बोल दो, आपके पास तो बाइक है, है? बाबा ही बाइक नहीं चलाता, वो तो ऐसे ही उड़ के आ जाता है। अच्छा, बड़ी गहरी बात सुना दी आपने तो। हाँ, ये चीजें विनाशी हैं, ठीक है, बाइक है हम उसे यूज करते हैं, कल नहीं होगी तो भी ठीक, कोई चीज हमारे पास है हम आनंदित हैं, नहीं है तो भी आनंदित हैं। जो बाबा कहते हैं 36 प्रकार का भोजन मिले तो भी आनंद, दाल रोटी मिले तो भी आनंद। कल दाल रोटी की बात थी ना, कुछ हिम्मत के साथ, हिम्मत वाली बात थी ना सवेरे मुरली में। तो कोई भी इच्छा हमारे मन को बाहर न ले जाए, इच्छा होंगी लेकिन इच्छा की गुलामी न हो जाए। संसार में जो रहते हैं आप में से, उनको तो बहुत इच्छाएं होती हैं, उसके बच्चे बड़े स्कूल में पढ़ रहे हैं, मेरे बच्चे साधारण से स्कूल में पढ़ रहे हैं, बड़ी रॉयल इच्छा। मेरे पास भी पैसा होता तो मैं भी अपने बच्चों को उस स्कूल में पढ़ाता। क्या सोचेंगे इस संकल्प को हटाने के लिए? मैं अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दूं, वो महान बने। बहुत अच्छी बात। और बोलो, बच्चा कितने भी अच्छे स्कूल में पढ़े, अगर वो बुद्धिमान नहीं है तो अच्छा स्कूल उसको अच्छे मार्क्स दिला देगा क्या? मेरा बच्चा चाहे गांव के स्कूल में पढ़ता है जहां एक ही मास्टर जी हैं, लेकिन बहुत होशियार है, वो आगे बढ़ेगा। तो मनुष्य का चरित्र, उसके अच्छे संस्कार, उसकी श्रेष्ठ भावनाएं, उसकी योग्यताएं उसको आगे बढ़ाती हैं। ऐसे अपनी हर इच्छा को ज्ञान के बल से समाप्त करते चलें। वस्तुएं तो विनाशी हैं। सबको बहुत अच्छी तरह याद रखना चाहिए, जो अपना समय धन के पीछे लगा रहे हैं, ब्राह्मण और दुनिया वाले भी, जो केवल धन को सब कुछ मान रहे हैं, उनका धन थोड़े ही समय में उनका साथ छोड़कर चला जाएगा और वो अकेले रह जाएंगे, और तब उनके दिन पश्चाताप में बीतेंगे। अब धन कमाने में बीत रहे हैं और तब धन गंवाने के कारण बीतेंगे। बिल्कुल सब अच्छी तरह समझ लें। काम आएंगे केवल या तो पुण्य कर्म या अपनी श्रेष्ठ स्थिति। धन किसी का साथी नहीं बनेगा, इसलिए सबसे ज्यादा कष्ट धनवान लोग पाने जा रहे हैं। ये सबको पक्का समझ लेना है। जिन्होंने अपने धन को सफल कर लिया, जिन्होंने जन कल्याण में धन लगा दिया, जो धन में आसक्त नहीं हुए, जिन्होंने अपने धन से स्वयं को और औरों को, बच्चों को, परिवार को सुख दिया, उनका धन सफल। केवल बाबा के काम में नहीं, काम में लगाया। कई लोग बड़े धनवान हैं लेकिन बच्चों को भी धन नहीं देते। कई लोगों के पास बहुत धन है लेकिन बीमारों का इलाज नहीं कराते परिवारों में। उनका धन उनके लिए कष्टदायी बन जाएगा। तो सभी ये बहुत अच्छे अभ्यास करें। लास्ट बात, दो मिनट में, जिनको अपने मन का मालिक बनना है उन्हें मन की स्पीड को धीमा करना पड़ेगा। और मन की स्पीड को धीमा करने की, ज्यादा नहीं, मैं केवल तीन बातें आपके समक्ष रख रहा हूं। अशरीरीपन, स्वमान के अभ्यास और श्रेष्ठ संकल्पों में विचरण करना। सुंदर संकल्पों का खजाना हमारे पास है, होना चाहिए। उनके चिंतन से हमारे संकल्पों की स्पीड बहुत कम हो जाती है। मनोविज्ञान के अनुसार एक मनुष्य एक मिनट में 20 से 25 संकल्प करता है। इन तीन विधियों से ये संकल्प रह जाएंगे 10-12, आधे पर आ जाएंगे। और तब मन को कंट्रोल करना, मन को दिशा देना, मन को इच्छा अनुसार चलाना बिल्कुल सहज हो जाएगा। इन तीन चीजों पर सभी बहुत ध्यान देंगे सारा दिन। और ऐसा समय आ रहा है कि हम अपने मन के ऐसे अच्छे मालिक बन जाएंगे तो जगत जीत बनेंगे, प्रकृति जीत बनेंगे, प्रकृति को ऑर्डर दे सकेंगे, प्रकृति को शांत कर सकेंगे। जब प्रकृति महाविनाश करेगी, जब ऐसा लगेगा कि प्रकृति सब कुछ नष्ट कर देगी, तब ऐसी योगी आत्माएं प्रकृति को शांत करेंगे। संकल्प देंगे शांत और प्रकृति शांत हो जाएगी। ओम शांति। चले अब इसी स्वमान और इसी प्रैक्टिस में बैठेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान स्वराज्य अधिकारी, और मन को ऑर्डर दे दें, अब केवल शिव बाबा पर एकाग्र हो जाओ।
चांद हो दिल की हो दौलत नैनों के हो नूर आँखों में समाई बाबा तेरी यादें तेरे नशे में चूर मन के अमन हो
बाबा तेरी यादें।